नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे बुनियादी हिस्सा है, भोजन।
बिल्कुल।
हमारी थाली में क्या है, ये सिर्फ हमारे स्वाद या सेहत का मामला नहीं है।
नहीं, ये तो पूरी मानव सभ्यता, हमारे समाज और देखा जाए तो इस ग्रह के भविष्य की कहानी कहता है।
और इस बड़ी कहानी को समझने के लिए आज हमारे हाथ में एक बेहतरीन किताब है,
सर जॉन क्रीब्स की फूड, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये किताब सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस बड़े सवाल के बारे में है कि 2050 तक हम 9 अरब से ज्यादा लोगों का पेट आखिर भरेंगे कैसे।
हाँ, और ये सवाल आज बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि हम एक बहुत ही अजीब दुनिया में जी रहे हैं।
एक अजीब विरोधाभास है।
एक तरफ आप देखिए, 2 अरब से ज्यादा लोग मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं,
और दूसरी तरफ
लगभग 1 अरब लोगों को रात में भूखे सोना पड़ता है।
ये कैसा विरोधाभास है। क्रैप्स की किताब हमें इसी पहेली की तह तक ले जाती है।
तो इस सफर पे निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे गाइड यानी लेखक सर जॉन क्रैब्स है कौन।
हाँ, ये जरूरी है।
वो कोई शेफ या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही सम्मानित प्राणी विज्ञानी यानी जूलॉजिस्ट हैं।
एक जूलॉजिस्ट भोजन के बारे में लिख रहा है, ये थोड़ा मतलब अजीब लग सकता है।
हाँ, लेकिन यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगाई है कि जानवर अपना भोजन कैसे ढूंढते हैं, क्या खाते हैं और क्यों।
तो वो भोजन को एक सर्वाइवल की कहानी की तरह देखते हैं।
बिल्कुल। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो सिर्फ उनका अकादमिक ज्ञान नहीं है,
उनका जमीनी अनुभव भी है।
हाँ, वो ब्रिटेन की फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी के पहले चेयरमैन थे।
अच्छा।
ये एजेंसी मैड काउ डिजीज जैसे एक बहुत बड़े खाद्य संकट के बाद बनी थी।
ओह, वो तो बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, तब लोगों का सरकार और खाद्य उद्योग पर से भरोसा मतलब पूरी तरह उठ चुका था।
तो वो जानते हैं कि विज्ञान, राजनीति और आम जनता का डर जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है।
बिल्कुल, उन्होंने असल दुनिया की मुश्किलों को बहुत करीब से देखा है।
चलिए तो देखते हैं कि उनका नजरिया भोजन को लेकर हमारी समझ को कैसे बदलता है।
इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि भोजन की समस्या का कोई एक आसान जादुई समाधान नहीं है। क्रैप्स कहते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ ऑर्गेनिक खेती अपना लो या सिर्फ GM फूड अपना लो और सब ठीक हो जाएगा,
तो वो आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा है।
सही बात।
ये किताब हमें एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर करती है।
और इस पहेली को सुलझाने के लिए क्रैब्स हमें सबसे पहले एक टाइम मशीन में बिठाते हैं,
लाखों साल पीछे, ये समझने के लिए कि हम जो खाते हैं वो क्यों खाते हैं,
हमारी खाने की आदतें आती कहाँ से हैं।
हाँ, और फिर वो हमें कृषि क्रांति से लेकर आज की औद्योगिक खेती तक ले आते हैं।
दिंग रेवोल्यूशन, GM फूड के विवाद, सब कुछ।
और किताब का मकसद ये बताना नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि हमें सबूतों के आधार पर सोचने का एक फ्रेमवर्क देना है।
तो चलिए उस फ्रेमवर्क को समझना शुरू करते हैं।
किताब की शुरुआत होती है सवाल से कि हमारा शरीर भोजन के लिए बना कैसे है। क्रेब्स बताते हैं कि हमारा पाचन तंत्र ही हमारे विकास की पूरी कहानी सुनाता है।
कैसे?
जैसे गाय भैंस जैसे शाकाहारियों की तुलना में हमारी आंतें बहुत छोटी हैं।
अच्छा।
और दूसरे प्राइमेट्स जैसे चिंपैंजी के मुकाबले हमारे जबड़े और दांत काफी कमजोर हैं।
तो इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह है कि हम ना तो सिर्फ कच्ची पत्तियां खाने के लिए बने हैं और ना ही सिर्फ कच्चा मांस खाने के लिए।
हम हमेशा से सर्वाहारी रहे हैं,
यानी पौधे और मांस दोनों खाते आए हैं।
और फिर इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया, आग,
खाना पकाना।
ये तो एक क्रांतिकारी कदम था।
बिल्कुल, पके हुए भोजन को चबाना और पचाना आसान हो गया,
जिससे हमारे शरीर को से कहीं ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी।
कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने हमारे बड़े दिमाग के विकास में मदद की।
मतलब जो हम आज सोच पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के आग जलाने के फैसले का भी हाथ है।
लेकिन हमारे पूर्वजों से हमें सिर्फ बड़ा दिमाग ही नहीं, एक और विरासत भी मिली है।
वो क्या?
मीठा, नमकीन और फैट वाला खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है।
हाँ, ये तो होता है।
ये हमारी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है।
अच्छा, ये कैसे?
सोचिए, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब कैलोरी मिलना बहुत मुश्किल था।
सही बात है।
ऐसे में ज्यादा ऊर्जा वाले यानी मीठे फल या चिकनाई वाले भोजन को पसंद करना जिंदा रहने की गारंटी थी।
तो हमारे दिमाग में ये बात कोड हो गई कि मीठा मतलब ऊर्जा, इसे खाओ।
बिल्कुल। और आज यही कोड हमारे लिए एक जाल बन गया है,
क्योंकि आज सुपरमार्केट में चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की भरमार है
और हमारा लाखों साल पुराना दिमाग हमें अब भी वही खाने के लिए उकसाता है,
और नतीजा दुनिया भर में मोटापे और डायबिटीज की महामारी।
तो इसका मतलब जब हम मीठा खाने के लिए ललचाते हैं तो ये हमारी विल पावर की कमी नहीं
बल्कि हमारे लाखों साल पुराने डीएनए का कसूर है
एक तरह से। हाँ,
ये तो बहुत निराशाजनक लगता है, जैसे हम अपनी आदतों के गुलाम हैं।
क्रेब्स यही समझाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसके लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है।
फिर लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया,
खेती की शुरुआत।
हमने खाना ढूंढना छोड़कर खाना उगाना शुरू कर दिया,
इससे स्थायी बस्तियां बनी, आबादी तेजी से बढ़ी
और महान सभ्यताओं का विकास हुआ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना।
हाँ, लेकिन क्रेब्स हमें इसका दूसरा स्याह पहलू भी दिखाते हैं।
वो क्या?
खेती शुरू करने के बाद हमारा आहार बहुत सीमित हो गया। हम कुछ ही फसलों जैसे गेहूं, चावल या मक्का पर निर्भर हो गए, इससे पोषण की कमी हुई।
अच्छा, कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि शुरुआती किसानों का स्वास्थ्य शिकारियों से भी बदतर था
और एक जगह रहने से बीमारियां भी तेजी से फैली।
तो कृषि क्रांति एक बहुत बड़ा समझौता था
और यहाँ से किताब हमें आधुनिक दौर में ले आती है, 20वीं सदी में,
जब दुनिया की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी
और बड़े बड़े विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे थे कि करोड़ों लोग भुखमरी से मर जाएंगे।
और फिर एक हीरो की एंट्री होती है,
नॉर्मन बोरलॉग।
बोरलॉग ने गेहूं की ऐसी किस्में बनाई जिनसे उत्पादन 3-4 गुना बढ़ गया।
इसे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कहा गया।
भारत और मेक्सिको जैसे देशों में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था।
उन्हें अक्सर एक अरब जाने बचाने वाला आदमी कहा जाता है।
भारत में तो हम इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हरित क्रांति ने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया।
लेकिन जैसा कि किताब बार बार बताती है, हर चमत्कार की एक कीमत होती है
और वो कीमत हम आज चुका रहे हैं।
हाँ, पंजाब और हरियाणा की बात कर रही हैं, सही है?
बिल्कुल, ज्यादा उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ,
इससे जमीन की सेहत खराब हुई, पानी जहरीला हो गया
और भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे चला गया।
जिस क्रांति ने हमें एक बार बचाया, आज वही हमारे लिए एक पर्यावरणीय संकट बन गई है।
टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है।
बिल्कुल, और यही कहानी औद्योगिक पशुपालन और मछली पकड़ने के तरीकों पर भी लागू होती है।
हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन इसके बदले में हमने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया है।
तो हमने उत्पादन तो बढ़ा दिया पर इसका हमारी सेहत पर क्या असर हुआ?
क्योंकि ज्यादा खाना और सही खाना, हाँ, ये दो बहुत अलग बातें हैं।
यहीं पर कुपोषण के दोहरे बोझ या डबल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन का जिक्र आता है।
ये एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट है। लोगों को कैलोरी तो मिल रही है प्रोसेस्ड फूड, चीनी, सस्ते तेल से,
लेकिन पोषण नहीं मिल रहा। जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी है।
हम पेट भर रहे हैं, शरीर नहीं।
तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो किताब के केंद्र में है।
क्या हम दुनिया को खिला सकते हैं?
क्रेब्स का जवाब है हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा।
वो कहते हैं कि हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा।
पहला, हमें टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जीएम फूड भी शामिल है।
जीएम फूड का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं।
हाँ, मीडिया में इसे फ्रैंकन फूड भी कहा जाता है।
लेकिन क्रेब्स कहते हैं कि हमें भावनाओं से हटकर विज्ञान को देखना चाहिए।
जीएम कोई एक चीज नहीं, ये एक तकनीक है।
हमें हर जीएम फसल को उसके अपने फायदे और नुकसान के आधार पर परखना चाहिए।
इसका एक शानदार उदाहरण है गोल्डन राइस।
हाँ, इसे विटामिन ए की कमी से लड़ने के लिए बनाया गया है
और विकासशील देशों में इस कमी की वजह से हर साल लाखों बच्चे अंधे हो जाते हैं।
गोल्डन राइस उनकी जान बचा सकता है।
तो अब सवाल ये है कि क्या इस तकनीक को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना सही है क्योंकि ये जीएम है?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा क्रेब्स एक और बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं
और वो है भोजन की बर्बादी।
एक मिनट, ये आंकड़ा सुनिए। दुनिया भर में पैदा होने वाला लगभग 30-40% भोजन खाए जाने से पहले ही बर्बाद हो जाता है।
30-40%? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब हम जो भी उगाते हैं उसका लगभग एक तिहाई हिस्सा सीधे कूड़ेदान में चला जाता है।
ये तो एक अलग ही महामारी है।
हाँ, और अगर भोजन की बर्बादी एक डिश होता
तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में ये चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होता।
तो दुनिया का पेट भरने का एक बड़ा हिस्सा इस बर्बादी को रोकने में छिपा है।
और तीसरा समाधान है हमारे खानपान में बदलाव, खासकर अमीर देशों में।
मांस और खासतौर पर रेड मीट का उत्पादन बहुत ज्यादा संसाधन लेता है।
पानी, जमीन, अनाज, सब कुछ।
क्रेब्स ये नहीं कहते कि सब शाकाहारी बन जाएं।
नहीं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि हमें अपने आहार में पौधों पर आधारित चीजों को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। तो इस पूरी बातचीत से जो कुछ बड़े विचार उभर कर आ रहे हैं अगर उन्हें देखें, तो पहली बात तो ये है कि हम आज भी अपनी विकासवादी विरासत के साथ जी रहे हैं।
हमारा दिमाग आज भी पाषाण युग में है, लेकिन हम एक सुपरमार्केट वाली दुनिया में रहते हैं।
बिल्कुल। दूसरी बात जो मुझे बार बार चौंका रही है वो ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा एक दोधारी तलवार रही है।
सही बात है। कृषि क्रांति ने हमें बसाया लेकिन बीमार भी किया।
हरित क्रांति ने हमें भुखमरी से बचाया लेकिन हमारी जमीन और पानी को संकट में डाल दिया।
हर समाधान अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता है।
और तीसरा और शायद सबसे जरूरी विचार ये है कि खाद्य प्रणाली एक सिस्टम है।
मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
हाँ, खेत में बोए जाने वाले बीज से लेकर हमारी प्लेट में आने वाले खाने तक और फिर हमारी सेहत और पर्यावरण पर उसके असर तक।
हम किसी एक हिस्से को अलग करके नहीं देख सकते।
एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वैज्ञानिक जोखिम और आम धारणा में जमीन आसमान का अंतर।
मतलब
हम जीएम फूड जैसी नई चीजों से डरते हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि घर की रसोई में बैक्टीरिया से होने वाला फूड पॉइजनिंग का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा और वास्तविक है।
हाँ, हम अक्सर गलत चीजों से डरते हैं।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
जैसे
कि पारंपरिक समस्या को तो हल कर दिया है लेकिन कुपोषण के बिल्कुल नए रूप बना लिए हैं।
वाह, ये आज की सच्चाई को एक लाइन में बयां कर देता है।
कैलोरी की कमी नहीं है, पोषण की है।
सही।
एक और विचार है जो समाधान की बात करता है। भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है।
इसका समाधान कई तरीकों का एक मिश्रण है। कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन, भोजन की बर्बादी को रोकना और टिकाऊ आहार की ओर बढ़ना।
और जीएम फूड पर उनका नजरिया बहुत ही संतुलित है।
हाँ, जो मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए।
वो कहते हैं हमें खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन उनके गुणों के आधार पर करना चाहिए, ना कि उस तरीके पर जिससे वे बनाए गए हैं।
एक तकनीक को सिरे से खारिज कर देना दुनिया का पेट भरने के लिए एक जरूरी औजार को फेंकने जैसा है।
तो इस सारी ज्ञान की बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? एक आम इंसान इन सब बातों से क्या सीख सकता है?
मुझे लगता है पहली और सबसे आसान चीज है मीडिया में आने वाली सुपर फूड या चमत्कारी डाइट की खबरों पर आंख बंद करके भरोसा न करना।
हाँ, अक्सर इनके पीछे विज्ञान कम और मार्केटिंग ज्यादा होती है।
बिल्कुल। क्रेब्स हमें वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए कहते हैं।
और दूसरी बात जो शायद हम सब आज से ही शुरू कर सकते हैं,
भोजन की बर्बादी को लेकर जागरूक होना।
हम सब ने अपनी थाली में खाना छोड़ने पर माँ बाप से डांट खाई है।
हाँ, लेकिन ये किताब बताती है कि ये सिर्फ एक घरेलू बात नहीं बल्कि एक वैश्विक संकट है।
तो अगली बार जब हम प्लेट में खाना परोसें तो शायद ये याद रखें।
बिल्कुल। और आखिर में अपने खान पान के बारे में थोड़ा और सोचना,
ये जानना कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है और उसे उगाने में कितने संसाधन लगे हैं।
शायद हफ्ते में एक दिन मांस न खाना या अपने खाने में दालों और सब्जियों को थोड़ी और जगह देना।
ये हमारी सेहत और इस ग्रह दोनों के लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि खाद्य प्रणाली कितनी ज्यादा जटिल है। आसान जवाब या नारे जैसे सिर्फ ऑर्गेनिक खाओ या सब कुछ टेक्नोलॉजी ठीक कर देगी
सुनने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन सच्चाई इनसे कहीं ज्यादा पेचीदा है।
बिल्कुल। असली समाधान मुश्किल समझौतों और वैज्ञानिक समझ में छिपा है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली और कहूं तो दुखद बात ये थी कि आज की दुनिया में भुखमरी का कारण उत्पादन की कमी नहीं है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
दुनिया में आज भी सबके लिए पर्याप्त भोजन पैदा होता है।
भुखमरी का असली कारण गरीबी और वितरण की असफलता है।
खाना सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता या वो उसे खरीद नहीं पाते।
ये एक तकनीकी नहीं बल्कि एक राजनीतिक और नैतिक चुनौती है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है कि एक उपभोक्ता और एक नागरिक के तौर पर हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ खाद्य प्रणाली बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।